సద్గురు సేదీవీ నదీ పరబ్రహ్మసు పరణాం అనంత కోటి సంత రామ దాస నిషదిన కరుణ సలాం నమో రామ గురుదేవజీ జనత్రికాలకే వంద విఘ్నహరణ మంగళకరణ రామ దాస ఆనంద్. గీతా ప్రెస్ కా కేసే క్రమిక్ వికాస్ హువా. గీతా ప్రెస్ పుస్తకో కో ఛాప్నే కా మాత్ర ప్రెస్ హీ నహీ హై, అపితు భగవాన్ కీ వాణీ సే నిశ్రిత జీవనోద్ధారక గీతా ఏవం మహాపురుషో కే వచనో ఇత్యాది కీ ప్రచార స్థలీ హోనే సే పుణ్య స్థలీ హై. భగవాన్ స్వయం ఇస్కా ఉద్ఘోష కియే హై కి జహాం మేరే నామ కా స్మరణ ప్రచార భజన కీర్తన ఇత్యాది హోతా హై ఉస్ స్థాన కో మే కభీ నహీ త్యాగతా. నాహం వసామి వైకుంఠే యోగినాం హృదయే నచ మద్భక్తా యత్ర గాయంతి తత్ర తిష్ఠామి నారద. గీతా ప్రెస్ కీ స్థాపనా కా ఉద్దేశ్య ఈశ్వర ప్రేమ సత్య సదాచార ఔర్ సద్భావం కే ప్రచార హేతు మానవ సేవార్థ సద్గ్రంథో కా ప్రకాశన కరణా హై. గీతా ప్రెస్ కీ స్థాపనా కే పహలే గీతా కీ పుస్తక మిల్నీ బడీ దుర్లభ థీ. మిల్తీ థీ తో పాఠ శుద్ధ నహీ హోతా థా, మూల్య భీ దే పానా సర్వసాధారణ కే లియే సులభ నహీ థా. జయదయాల్ జీ గోవిందకా కే మన మే యే భావ బడా ప్రబల థా కి హమ్ లోగో కో గృహస్థాశ్రమ మే సుఖ శాంతి కేసే మిలే తథా హమే భగవత్ ప్రాప్తి హో సకే. ఉన్కే ఏక్ హీ లగన థీ కి మానవ మాత్ర ఇస్ భవసాగర్ సే కేసే పార హో. మనుష్య జన్మతా హై, బడా హోతా హై, పరివార్ మే రహతా హై, పరివార్ కే సాథ్ మోహ కర్తా హై, మర్ జాతా హై, ఇస్ ప్రకార్ పశువత్ జీవన్ వ్యతీత్ కర్ అన్య యోనియో మే చలా జాతా హై. జీవన్ చింతా శోక్ ఔర్ దుఃఖో సే ఘిరా రహతా హై. మానవ శరీర్ పాకర్ భీ యది చింతా ఔర్ శోక్ మే డూబా రహా తో ఉస్నే మనుష్య శరీర్ కా దురుపయోగ్ హీ కియా హై. యే శరీర్ చింతా శోక్ సే ఊపర్ ఉఠకర్ కేవల్ భగవత్ ప్రాప్తి కే లియే హీ ప్రభు నే కృపా కర్కే దియా హై. చింతా శోక్ హమారీ బేసమ్జీ సే హోతే హై, ఇస్మే ప్రారబ్ధ యా భగవాన్ కా హాత్ నహీ హై. హమ్ ఇస్ బాత్ కో సమజ్ జాయే తో కభీ భీ చింతా శోక్ నహీ హో సకతే. సాధక భాయీ బహనో కీ ధారణా హై కి భగవత్ ప్రాప్తి కే లియే తో ఏకాంత మే జానా హోగా, కహీ తీర్థో మే రహనా హోగా, కహీ వన్ మే రహనా హోగా, వహాం జాకర్ కఠోర్ పరిశ్రమ సాధన తపస్యా కరణీ హోగీ, తబ్ కహీ జాకర్ భగవత్ ప్రాప్తి సంభవ హై. కహీ ఏసే ప్రచలిత భ్రమ హై కి స్త్రీ హై, శూద్ర హై, వైశ్య హై, ఏవం గృహస్థో కే ఇన్ ఏవం గృహస్థో కా కళ్యాణ నహీ హోతా ఇత్యాది కే సమాధాన మే సేఠ్ జీ నే శాస్త్రానుసారీ ఇన్ బాతో పర్ జోర్ దియా కి మాతాయే బహనే పతి కీ సేవా సే, వ్యాపారీ శుద్ధ వ్యాపార సే, పుత్ర పితా మాతా కీ సేవా సే, శిష్య గురు కీ సేవా సే, గృహస్థ అతిథి కీ సేవా సే తాత్పర్య సభీ లోగ్ భగవత్ ప్రాప్తి కర్ సక్తే హై. ఇన్హీ భావో కే ప్రచార తథా భగవద్ గీతా కే ప్రచార కే ద్వారా మానవ మాత్ర కే కళ్యాణ కే ఉద్దేశ్య సే ఉన్హోనే గీతా ప్రెస్ కీ స్థాపనా కీ. మానవ మాత్ర భగవత్ ప్రాప్తి హేతు జాగృత హో ఇస్కే లియే గీతా ప్రెస్ సే శ్రీమద్ భగవద్ గీతా కే సాథ్ సాథ్ రామాయణ పురాణ ఉపనిషద్ భక్త చరిత్ర నిత్య పాఠ భజన సాధన ఏవం బాలోపయోగీ స్త్రీయోపయోగీ సర్వోపయోగీ పుస్తకే చిత్రకథా ఇత్యాది తథా జయదయాల్ జీ గోవింద్ కా మానే సేఠ్ జీ, హనుమాన్ ప్రసాద్ జీ పోద్దార్ మానే భాయీ జీ, ఏవం స్వామీ రామ్ సుఖదాస్ జీ మహారాజ్ కే ప్రవచనో కు పుస్తక కే రూప్ మే ప్రకాశిత్ కియా జాతా హై. దిన్ ప్రతిదిన్ భగవత్ కృపా సే ప్రకాశనో కీ సంఖ్యా బఢ్తీ చలీ జా రహీ హై. అహిందీ భాషీ లోగో కీ సువిధా తథా మాంగ్ పర్ हिंदी, संस्कृत के अतिरिक्त बंगला, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ओडिया, असमिया, मलयालम, पंजाबी, नेपाली, अंग्रेजी, उर्दू भाषाओं में भी पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं। मासिक पत्र कल्याण का शुभारंभ, मारवाड़ी अग्रवाल सभा का 8वां अधिवेशन चैत सुदी 1 से 3 संवत 1983 13, 14, 15 अप्रैल सन 1926 को दिल्ली में हुआ। श्रद्धेय सेठ जी द्वारा नियुक्त स्वागताध्यक्ष आत्माराम जी खेमका ने भाई जी द्वारा तैयार किया हुआ भाषण पढ़ा। उस अधिवेशन में घनश्याम दास जी बिड़ला भी आए हुए थे। भाषण के विचार यद्यपि बिड़ला जी के अपने अनुकूल नहीं थे, परंतु जन साधारण इनसे बहुत प्रभावित हुआ, ये बात स्वयं बिड़ला जी ने कही। वे भाई जी से बोले, ये यदि तुम लोगों के पास अपने ही विचारों का, सिद्धांतों का एक पत्र हो तो तुम लोगों को और भी सफलता मिल सकती है। तुम लोग अपने विचारों का एक पत्र निकालो। अधिवेशन समाप्त होने पर सब लोग अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर चल पड़े। उस समय सेठ जी चूरू से भिवानी आए हुए थे, उन्हें बांकुड़ा जाना था, सत्संग के लिए भिवानी में ठहर गए। हनुमान प्रसाद जी पौद्दार के मन में आया कि सेठ जी से मिलता चलूं। भिवानी से रेवाड़ी तक साथ आकर रेवाड़ी से बंबई चला जाऊंगा। भिवानी का सत्संग करके सेठ जी ने बांकुड़ा के लिए प्रस्थान किया। गाड़ी में अधिवेशन की चर्चा छिड़ गई और उसी प्रसंग में भाई जी ने घनश्याम दास जी बिड़ला के पत्र निकालने की सलाह वाली बात कह डाली। पास में लच्छीराम जी मुरोदिया बैठे हुए थे। मुरोदिया जी सुनते ही बोले, बस 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 बस, ये बात बिल्कुल ठीक है, अवश्य ही कोई पत्र निकालना चाहिए। फिर वे भाई जी को गाड़ी के एक कोने में ले गए तथा उनसे वचन लिया कि मैं प्रतिदिन 2 घंटा संपादन कार्य किया करूंगा। भाई जी ने स्वीकार कर लिया। भाई जी से वचन लेकर फिर वे मुरोदिया जी सेठ जी के पास आए तथा पत्र निकालने की स्वीकृति मांगी। सेठ जी ने सहर्ष अनुमति दे दी तथा गाड़ी में ही चैत सुदी 9वीं संवत 1983 22 अप्रैल 1926 के दिन पत्र का नाम कल्याण निश्चित किया गया। वेंकटेश्वर प्रेस के मालिक मुंबई में रहते थे, वे भाई जी के मित्र थे। उन्होंने पत्र की आवश्यक कार्यवाही सरकार से करवाने की तथा पत्र छापने की जिम्मेदारी स्वयं ले ली। यह निश्चित हुआ कि केवल छपाई का विषय भाई जी देंगे एवं मुंबई से इसका प्रकाशन प्रारंभ हो जाएगा। हनुमान प्रसाद जी पौद्दार के अथक परिश्रम से कल्याण का प्रथम अंक श्रावण वदी 11 संवत 1983 अगस्त 1926 के दिन सत्संग भवन मुंबई के द्वारा वेंकटेश्वर प्रेस में छपकर प्रकाशित हुआ। दूसरे वर्ष से कल्याण का प्रथम अंक विशेषांक के रूप में भगवन नामांक निकला। पहले वर्ष में 12 साधारण अंक प्रकाशित हुए। बाद में कल्याण के प्रकाशन की योजना गोरखपुर से बन गई। सेठ जी ने बांकुड़ा से भाई जी को तार दिया कि कल्याण का सारा स्टाफ लेकर शीघ्र गोरखपुर जाकर कल्याण का आगामी अंक वहीं से प्रकाशित करो। इस प्रकार कल्याण का प्रकाशन गोरखपुर से भादवा संवत 1984 अगस्त 1927 से प्रारंभ हुआ। कल्याण भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, सदाचार एवं साधन संबंधी सामग्री द्वारा जन जन को भगवत प्राप्ति हेतु प्रेरित करने का निरंतर प्रयास कर रहा है। कल्याण के प्रकाशन के बाद इस बात की आवश्यकता प्रतीत होने लगी कि कल्याण की तरह एक मासिक पत्र अंग्रेजी में भी निकाला जाए। जनवरी 1934 से कल्याण कल्पतरु का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसके कंट्रोलिंग एडिटर भाई जी रहे तथा संपादक श्री चिमनलाल जी गोस्वामी थे। कल्याण कल्प तरु के माध्यम से श्रीमद भगवद गीता, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, मनुस्मृति, अध्यात्म रामायण, जैमिनी अश्वमेध इत्यादि ग्रंथों का प्रामाणिक अनुवाद अंग्रेजी भाषा में हो सका। सेठ जी की नीति एवं महात्मा गांधी जी की सम्मति के अनुसार कल्याण एवं कल्याण कल्पतरु में आरंभ से ही विज्ञापन नहीं छापा जाता है। भाई जी एक बार गांधी जी से मिलने गए थे तो गांधी जी ने कहा कि एक बात हमारी मानना कि तुम कल्याण के अंदर कोई विज्ञापन नहीं देना, क्योंकि विज्ञापन देने पर संस्था पैसे में चली जाएगी। सेठ जी का तो पहले से ही विचार नहीं था, इस विषय में सेठ जी के और गांधी जी के एक विचार रहे। दर्शनीय स्थल भगवान श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् भगवद गीता को छापते छापते गीता प्रेस आज पुण्य स्थली के रूप में स्थापित हो गया। देश विदेश के लोग यहां आकर अपने भाग्य की सराहना करते हैं। वैसे तो पूरा प्रेस ही दर्शनीय है, लेकिन दो स्थल विशेष आकर्षक के केंद्र हैं। पहला गीता द्वार, भारतीय संस्कृति एवं धर्म की महत्ता निर्विवाद है। हमारी सनातन संस्कृति के अनेक कलापूर्ण प्राचीन प्रतीक देश में स्थान स्थान पर हैं। भारतीय मंदिरों में जो कला सौंदर्य है वो विश्व के किसी भी कला मर्मज्ञ को मुग्ध कर देता है। कला सौंदर्य के साथ उनमें गूढ़ धार्मिक एवं आध्यात्मिक तत्व निहित है। ये स्वाभाविक है कि अपने किसी निर्माण में हम देश की इस गौरवमयी प्राचीन कला से प्रेरणा ग्रहण करें। इसलिए गीता प्रेस का प्रवेश द्वार बनाने में देश के विख्यात प्राचीन मंदिरों से प्रेरणा ली गई। बौद्ध, जैन एवं सिख मंदिरों की कला प्राचीन हिंदू कला का एक अंग है। इसलिए प्रवेश द्वार के निर्माण में सनातन धर्म के मंदिरों के अतिरिक्त बौद्ध, जैन एवं सिख धर्म के मंदिरों की कला से भी प्रेरणा ली गई है। एवं द्वार के प्रत्येक अंश का निर्माण किसी न किसी प्राचीन सांस्कृतिक कलापूर्ण मंदिर के किसी अंश के आधार पर ही हो, इसका यथाशक्ति ध्यान रखा गया है। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप प्रवेश द्वार प्राचीन मंदिर की कला की विभिन्न शैलियों का आंशिक रूप में दिग्दर्शन बन गया। दूसरा लीला चित्र मंदिर। गीता प्रेस का कार्य प्रारंभ होने के कुछ वर्षों बाद गीता प्रेस में काम बढ़ जाने से नया मकान बना, तब उसके ऊपर एक विशाल भवन बनाया गया। भवन बन जाने पर पूरी भगवद गीता संगमरमर पत्थर पर खुदवा कर उसमें शीशा भरवाया गया और दीवालों पर चारों ओर पूरी गीता के क्रम से भी पत्थर जड़ दिए गए। इसके साथ साथ संत कबीर, तुलसीदास, दादू, सुंदरदास, रहीम, नारायण स्वामी आदि के चुने हुए लगभग 700 दोहे, चौपाई आदि सुंदर अक्षरों में भवन के बाहर भीतर दीवालों पर लिखवाए गए। कल्याण के लिए वर्षों से शास्त्रानुसार भगवान की लीलाओं के चित्र बनवाए जा रहे थे। उनका बड़ा संग्रह था, उनमें से कुछ चित्र चुने गए और बहुत से नए चित्र भवन में लगाने के लिए बनवाए गए। पुराने हस्तनिर्मित चित्र इकट्ठे किए गए, फिर सब पर फ्रेम लगवाकर उन्हें सजा दिया गया। भगवत कृपा से तत्कालीन चित्रकारों ने रामलीला और कृष्ण लीला तथा अन्य देवी देवताओं आदि के जो चित्र बनाए वे इतने सजीव हैं कि उन्हें देखकर सदाई देखते रहने की इच्छा रहती है। इन चित्रों के यथास्थान लगने के उपरांत हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति महामहिम देश रत्न डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी वैशाख सुदी अष्टमी विक्रम संवत 2012 दिनांक 29 अप्रैल सन 1955 को प्रातःकाल गीता प्रेस गोरखपुर में पधारकर इसका उद्घाटन करने की कृपा की। इस प्रकार ये अभूतपूर्व लीला चित्र मंदिर बन गया। तीसरा गीता भवन स्वर्गाश्रम। सेठ जी को एक शांति प्रिय स्थल की आवश्यकता महसूस हुई, जहां कोलाहल न हो, पवित्र भूमि हो, साधन भजन के लिए अति आवश्यक सामग्री उपलब्ध हो। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्तराखंड की पवित्र भूमि पर सन 1918 संवत 1974 के आसपास सत्संग करने हेतु सेठ जी पधारे। ऋषिकेश में सेठ जी ने सत्संग का आयोजन किया। कई वर्ष वहां सत्संग करने के साथ साथ वे किसी एकांत वैराग्यपूर्ण स्थान की खोज में लगे रहे। गंगा के पार भगवती गंगा के तट पर वटवृक्ष और वर्तमान गीता भवन का स्थान सेठ जी को परम शांतिदायक लगा। सुना जाता है कि वटवृक्ष वाले स्थान पर स्वामी रामतीर्थ ने कभी तपस्या की थी। सेठ जी कहा करते थे कि यह वटवृक्ष और गीता भवन हमें भगवान की कृपा से स्वाभाविक ही प्राप्त हुए हैं। फिर क्या था, सन 1925 के लगभग से सेठ जी अपने सत्संगियों के साथ प्रत्येक वर्ष ग्रीष्म ऋतु में लगभग 3 माह वहां रहने लगे। प्रातः 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक भोजन संध्या वंदन आदि के समय को छोड़कर सभी समय लोगों के साथ भगवत चर्चा, भजन कीर्तन आदि चलता रहता था। धीरे धीरे सत्संगी भाइयों के रहने के लिए पक्के मकान बनने लगे। भगवत कृपा से आज वहां कई सुव्यवस्थित एवं भव्य भवन बनकर तैयार हो गए, जिनमें 1000 से अधिक कमरे हैं और सत्संग भजन कीर्तन के स्थान अलग हैं, जो शुरू से ही सत्संगियों के लिए निःशुल्क रखे गए। यहां आकर लोग गंगा जी के सुरम्य वातावरण में बैठकर भगवत चिंतन तथा सत्संग करते हैं। यह वह भूमि है जहां प्रत्येक वर्ष न जाने कितने भाई बहन सेठ जी के सानिध्य में रहकर जीवन मुक्त हो गए होंगे। यहां आते ही जो आनंदानुभूति होती है वो अकथनीय है। यहां आने वाले लोगों को कोई असुविधा नहीं होती, बल्कि निःशुल्क आवास एवं उचित मूल्य पर भोजन एवं राशन, बर्तन आदि आवश्यक सामग्री उपलब्ध है। ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम चूरू। जयदयाल जी गोविंदका ने इस आवासीय विद्यालय की स्थापना इस उद्देश्य से की कि बचपन से ही अच्छे संस्कार बच्चों में पड़े और वे समाज में चरित्रवान, कर्तव्यनिष्ठ, ज्ञानवान तथा भगवत प्राप्ति के प्रयासी हों। स्थापना वर्ष 1924 ईस्वी से ही शिक्षा, वस्त्र, शिक्षण सामग्री इत्यादि आज तक निःशुल्क है। उनसे भोजन खर्च भी नाम मात्र का लिया जाता है। गीता भवन आयुर्वेद संस्थान। आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। जयदयाल जी गोविंदका आयुर्वेदिक औषधियों का ही सेवन करते थे। शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण के लिए गीता भवन में व्यवस्था की गई, ताकि हिमालय की ताजा जड़ी बूटियों एवं गंगाजल का उपयोग करके शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियां जन सामान्य को सुलभ कराई जा सके। निःशुल्क आयुर्वेदिक औषधियों का संचालन भी किया गया। इस समय स्वर्गाश्रम गोरखपुर, चूरू, कलकत्ता एवं सूरत में निःशुल्क औषधि वितरण की भी व्यवस्था है। पहले कलकत्ता में भी औषधियों का निर्माण होता था। छठी एक संस्था है परम सेवा समिति। मनुष्य भगवत प्राप्ति करे यह उनकी प्रबल धारणा थी, क्योंकि मनुष्य जन्म पाना ही भगवत की कृपा है, भगवान की कृपा है। इस अवसर को कोई व्यर्थ खोदे ऐसा वे चाहते नहीं थे। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तित्र संशय है। जो पुरुष में मुझको स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। इस श्लोक पर चिंतन करके सेठ जी ने एक परम सेवा समिति का गठन किया। सत्संगी भाइयों से मरणासन्न व्यक्ति के पास जाकर भगवान नाम सुनाने की विशेष प्रेरणा दी। स्वयं भी संध्या आदि नित्य नियम और सत्संग छोड़कर भी मरणासन्न व्यक्ति को भगवान का नाम सुनाते थे। इस कार्य से इन परम भागवत कर्मनिष्ठ ने अधिक से अधिक लोगों को भगवत प्राप्ति कराने के लिए आजीवन कार्य किया। गीता रामायण परीक्षा समिति, श्रीमद् भगवद गीता और रामचरितमानस ये दोनों मंगलमय दिव्यतम ग्रंथ हैं। इनमें मानव मात्र को अपनी समस्याओं का समाधान मिलता है तथा जीवन में अपूर्व सुख शांति का अनुभव होता है। संपूर्ण विश्व में इन अमूल्य ग्रंथों का समादर है। इन ग्रंथों के प्रचार के द्वारा लोक मानस को अधिकाधिक परिष्कृत करने की दृष्टि से श्रीमद् भगवद गीता और रामचरितमानस की परीक्षाओं का प्रबंध किया गया। दोनों ग्रंथों की परीक्षाओं में बैठने वाले लगभग 10,000 विद्यार्थियों के लिए लगभग 200 परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था की गई। नियमावली मंगाने के लिए कृपया निम्नलिखित पते पर व्यवहार होता है। 8वां नाम जप विभाग, सन 1927 में कल्याण के 6 अंक प्रकाशित होने के सत्संग में ये विचार उठा कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे मंत्र का 3.5 करोड़ जाप किया जाए। इसके लिए कल्याण पत्र के माध्यम से जन साधारण को सूचना दी। जब किसी भी तिथि से किसी के भी द्वारा किया जा सकता है, लेकिन पूर्ति चैत्र पूर्णिमा को ही हो। उसी समय से आज तक जप करने वाले भाई बहन मंत्र संख्या की सूचना नाम जप विभाग गीता प्रेस को भेजते हैं। प्रतिवर्ष की नाम जप संख्या कल्याण में प्रकाशित भी होती है। साधक संघ, मानव मात्र की मानव जीवन की सर्वतोमुखी सफलता आत्म विकास पर ही अवलंबित है। आत्म विकास के लिए जीवन में सत्यता हो, सरलता हो, निष्कपटता हो, सदाचार परायणता हो, भगवत सामुख्य हो इत्यादि देवी गुणों का ग्रहण और असत्य, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, द्वेष आदि आसुरी गुणों का त्याग ही एकमात्र श्रेष्ठ और सरल उपाय है। मनुष्य मात्र को इस सत्य से अवगत कराने के पावन उद्देश्य से जनवरी 1957 में साधक संघ की स्थापना की गई। इसका सदस्यता शुल्क कुछ भी नहीं। सभी कल्याणकामी स्त्री पुरुषों को इसका सदस्य बनना चाहिए। सदस्यों के लिए ग्रहण करने के 12 नियम और त्याग करने के 16 नियम बने हुए हैं। विशेष जानकारी के लिए साधक संघ गीता प्रेस गोरखपुर से संपर्क किया जा सकता है। निष्काम भाव के आचार्य, भगवान अपने हैं, हमारा अहित नहीं कर सकते। उनसे कुछ भी मांगना अपनी तुच्छता है, क्योंकि वे हमको जितना देना चाहते हैं। कहीं हम छोटी वस्तु मांगकर उनकी सीमा तो नहीं तोड़ रहे हैं। इन सब बातों को खूब अच्छी तरह से समझाने वाले सेठ जी ने सदैव भगवान की निष्काम भक्ति व कर्म पर जोर दिया। वे कहा करते थे, भगवान से कुछ मांगना अपने आप को भगवान से ज्यादा बुद्धिमान समझना है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे कि जिस प्रकार ज्ञान योग के आचार्य शंकराचार्य जी एवं भक्ति योग के आचार्य रामानुजाचार्य जी हैं, इसी प्रकार सेठ जी निष्काम के आचार्य हैं। एक बार सेठ जी रोगग्रस्त हो गए। उनके सत्संगियों ने विचार किया, भगवान से उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा सुनकर सेठ जी उन लोगों से बोले कि जो मेरे लिए अनुष्ठान करेंगे वे मेरे मित्र नहीं शत्रु हैं, क्योंकि हमारे प्यारे का विधान बदलना चाहते हैं। यदि तुम लोग ऐसा करोगे तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि वे तुम्हारी प्रार्थना बिल्कुल न सुने, और यही कहूंगा कि हे भगवान, आपको जैसा करने में प्रसन्नता का अनुभव हो वैसा ही आप करो। इतने निष्काम। एक बार भगवान विष्णु ने अपने चतुर्भुज रूप से सेठ जी को साक्षात दर्शन दिया। सेठ जी ने सोचा, इनको तो मैंने बुलाया ही नहीं था, ये क्यों आए। उसी क्षण उन्हें स्फुरणा हुई, निष्काम भक्ति के प्रचार के लिए संभवतः इन्होंने दर्शन दिया है। तब से वे निष्काम भक्ति के प्रचारक हो गए। भगवान से भी नहीं कहा कि आप मेरे को दर्शन दो, और दर्शन दिया तो कि मैंने बुलाया ही नहीं, क्यों आए वही? तो अपने आप भाव जागृत हुआ कि निष्काम भाव के लिए, निष्काम भाव के प्रचार के लिए। तब से वे निष्काम भक्ति के प्रचारक हो गए। आपने पूरे जीवन भर में केवल एक ही सकाम प्रार्थना की थी भगवान सूर्य से कि हे सूर्य भगवान, यदि पर स्त्री में मेरी पाप बुद्धि हो जाए तो आप मुझे उसी समय भस्म कर देना। वे पर स्त्री को स्पर्श तक नहीं करते थे तथा बिना घर वालों को साथ लिए स्त्रियों को अकेले सत्संग इत्यादि में आने से मना करते थे। लेकिन क्या करें, धर्म नीति और मर्यादा का पालन करना उनके लिए बहुत सहज और सरल था, और जन जन में उनके प्रति बड़ा विश्वास भी हो गया कि हमारे घर की कोई भी बहू बेटी स्त्री यदि गीता बहन जाएगी, सेठ जी के संरक्षण में रहेगी, तो किसी प्रकार का कोई उनको अनुचित नहीं लगता था। कुछ प्रसंग है। एक बार निष्काम भक्ति के उदाहरण में सेठ जी ने कहा कि यदि कुछ विधर्मी, देखो कहना तो नहीं चाहिए सभा में, लिखा है, एक बार निष्काम भक्ति के उदाहरण में सेठ जी ने कहा कि यदि कोई विधर्मी मेरी पत्नी के साथ बलात्कार का प्रयास करे तो मैं अपनी शक्ति भर उसे बचाने का प्रयास करूंगा, परंतु मेरे मन में यह नहीं आएगा कि हे भगवान आप हमारी रक्षा करो, मेरी तरफ से मैं मर मिटूंगा बचाने के लिए, पर भगवान से प्रार्थना नहीं करूंगा। एक बार सेठ जी को एक्जिमा हो गई, एक्जिमा कहे मैं बैठ जी है चर्म रोग, अच्छा दाद सुना तो है नहीं, ठाक होने अच्छा ठीक। एक बार सेठ जी को बीची एक्जिमा हो गई है, खा जावे। सेठ जी बोले कि बीची की कोई अनुभूति अनुभूत दवाई लेके आओ। किसी ने पूछ लिया कि सेठ जी आप तो निष्काम है, फिर अनुभूत दवाई मांगने की आपकी क्या इच्छा हो गई, आपकी निष्कामता कहां चली गई, अथवा आपके ऐसी दवाई मंगाने का क्या उद्देश्य है? सेठ जी बोले, अरे हम क्रिया पागल की तरह थोड़े ही करेंगे, निष्काम तो भाव है, क्रिया हमारी पागलों की तरह थोड़े ही होगी, काम तो बड़ी सावधानी से बुद्धिमानी से करना है, परिणाम में समता रहे निष्काम भाव रहे यही हम चाहते हैं। सेठ जी के बीची होने पर एक सज्जन उनकी दवा लगा रहे थे। सेठ जी बोले कि भाई जितने प्रेम से श्रद्धा से तू मेरे दवाई लगा रहा है वैसे ही औरों के भी इसी प्रकार इसी भाव से यदि तू दवाई लगाए तो तेरी तत्काल मुक्ति हो जाए, मेरे लगाने से तो इतनी मुक्ति नहीं होगी, दूसरे के ऐसा भाव रख के करे तो मुक्ति हो जाए। घनश्याम जी से सेठ जी ने अंत समय में पूछा, घनश्याम तू भगवान के पास जाकर के कहोगो? वो घनश्याम जी को घनश्याम बोलते थे। घनश्याम तू भगवान के पास जाकर के कहेगो? घनश्याम जी बोले, उनसे कहूंगो कि सारे संसार को भ्रष्टाचार मिटा दे। सेठ जी बोले, ना भाई ना, ऐसो वचन नहीं बोलनो। क्यों? अरे मालिक को हुक्म देनो आपनो काम है? नहीं, मालिक को हुक्म थोड़े ही देनो चाहिए। तब घनश्याम जी ने पूछा, तो फिर के कहूं? तो सेठ जी ने कहा कि बोलना चाहे कि आपको जैसा जचे उस तरिया करो, जैसे जचे उस तरह करो। एक बार सेठ जी के सिर में दर्द हो रहा था, किसी भाई ने कहा कि सेठ जी आप ध्यान लगा लें तो सिरदर्द दूर हो जाएगा। सेठ जी बोले, क्या सिरदर्द को दूर करने के लिए ध्यान जैसी चीज को खत्म करूंगा? कोई व्यक्ति पत्थर के लिए, सामान्य पत्थर के लिए हीरे को खर्च करेगा? स्वर्गाश्रम में एक बार सेठ जी वटवृक्ष के नीचे बैठे थे। एक विदेशी आदमी ने कैमरे से उनका चित्र लिया। वो लेने लगा, उन्होंने अपने चेहरे पर गमछा डाल दिया। लोगों ने कहा कि ये क्या है? सेठ जी ने कहा कि ये मुझे मुर्दे की पूजा नहीं करवानी है, ये तो चित्र लेना तो मुर्दे की पूजा करनी है, मुर्दे की पूजा नहीं करवानी है। सेठ जी अपना चित्र खिंचवाने में, छपवाने में, पूजवाने में सख्त विरोधी थे। एक बार किसी सज्जन ने कहा कि सेठ जी आप ऋषिकुल चुरू के लिए थोड़ा फंड जमा करा दो ताकि व्यास से संस्था आराम से चले। सेठ जी बोले कि यदि अच्छा काम होगा तो धन की कमी नहीं रहेगी, खराब काम होगा तो हमें चलाना नहीं है। वे सकाम अनुष्ठान के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। कोई सकाम अनुष्ठान के विषय में पूछता कि सेठ जी मैं कौन सा अनुष्ठान करूं जिससे मेरे धन हो जाए, मेरे पुत्र हो जाए, मेरा दुख मिट जाए, मेरा संकट टला जाए, तो उत्तर देते कि मुझे इसका अभ्यास नहीं है। देखो मुझे मालूम है कि समय तो हो गया लेकिन छोड़ने का मन नहीं करता। गोविंद भवन में एक सत्संगी ने एक सत्संगी को उन्होंने बताया कि सुनो, थे मेरी बात सुनो, अभी तुम्हारे धारणा है कि मेरे संग से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए मेरे से तुम प्रेम करते हो। यदि तुम्हारे ये जच जाए कि जयदयाल के संग करने से हमें नरक में भी जाना पड़े तो कोई हर्जा नहीं है, हम जयदयाल की बातों से प्रेम करेंगे, तब आपका प्रेम निष्काम होगा। अभी तो आपको ये लगता है कि हमारी मुक्ति हो जाएगी इसलिए हम सेठ जी कह रहे, नहीं, नरक में जाओगे। ऐसा ही तुम्हारे मन में जच जाए फिर भी मेरी बातें सुनो तो फिर निष्काम प्रेम है। एक बार सेठ जी गोरखपुर के कुष्ठाश्रम की एक सभा में गए। सेठ जी से कुछ बोलने को कहा। सेठ जी ने कहा, आप लोग जो ये सेवा का काम करते हैं ये बहुत अच्छा है, परंतु आप जिनकी सेवा करते हो उनका अपने ऊपर ऋण मानना चाहिए, कारण आपने तो समय लगाकर इनकी भौतिक सेवा की और आपका निष्काम भाव होने से अंतःकरण शुद्ध हो गया, आप तो भगवान के निकट पहुंच गए, इसलिए इनसे बड़ी सेवा तो आपकी अपने की है। ये सेवा का मौका इन्होंने दिया तब ने आपको मौका मिला है, ये अलौकिक लाभ इनके बिना कैसे मिलता, इसलिए जिनकी आप सेवा करते हो उनका ऋण मानना चाहिए, तब आपकी सेवा सेवा कहलाएगी। एक दिन गीता भवन में सत्संग हो रहा था, लोग अपने जूते वहीं खोल दिए थे, सेठ जी ने भी वहीं खोल दिए थे, तो गीता भवन में किसी का एक जूता सेठ जी के पांव की ठोकर से आगे खिसक गया। सेठ जी गोपाल जी मोता का हाथ पकड़े हुए थे, दो कदम आगे चलकर वापस लौटे और उस जूते को वापस यथास्थान करके बोले, तुम लोगों के रग रग में सकामता भरी पड़ी है। अब वो जूता ठोकर लग गया, जूता आगे चला गया। गोपाल जी मोता थे, बीकानेर गए थे, अब तो नहीं है संसार में, तो वे दो कदम आगे जाकर वापस ला करके उस जूते को वहां रख दिया। तो सेठ जी बोले, तुम लोगों के रग रग में सकामता भरी पड़ी है। गोपाल जी मोता ने कहा कि सेठ जी जूता उधर चला गया, इसको यहां रख दिया, इसमें सकामता निष्कामता क्या हुई? सेठ जी ने कहा, यदि हमारा जूता पड़ा रहता तो तुम अपने हाथ से ठीक करते ना। अपने स्थान पर न मिलने के कारण उसका जूता था, उसको तो अब खोजना पड़ेगा। तुम्हें जिसमें लाभ दिखे वो काम तो करना, और जिसमें लाभ नहीं दिखे उस काम को नहीं करना, यही तो सकामता और निष्कामता है। कोई सींगपूस थोड़ा ही होती है। एक बार किसी के स्वास्थ्य के लिए किसी ने महामृत्युंजय जप करवाने के लिए सेठ जी से पूछा। सेठ जी ने डांट करके कहा, सलू के लिए भैंस काटना चाहते हो? सलू का होता है जूता सिलाई के लिए काम में लेने वाला चमड़े का धागा। सलूकी के लिए भैंस काटना चाहते हो? इस समय तो उसे भगवत प्राप्ति हो सकती है, महामृत्युंजय का जाप करा करके थोड़े से श्वास और बढ़ जाएंगे, और क्या होगा। डांट दिया उसको। एक बार प्रवचन में सेठ जी ने कहा, कभी यदि भगवान दर्शन दें और वर मांगने के लिए कहें तो क्या कहना चाहिए? आप क्या चाहें, आप क्या मांगेंगे, आपको क्या चाहिए? संसार में आपसे बड़ी कोई चीज नहीं है। भगवान से अब यही कहना चाहिए, भगवान से यही कहना चाहिए कि अब आप हमको मिल गए, संसार में आपसे बड़ी क्या चीज है? आप मिल गए, अब हमें क्या चाहिए बताओ, आपसे बढ़कर क्या चीज है? आपसे संयुक्त होने के कारण मैं आपसे बड़ा हो गया, अब आपको क्या चाहिए? वो आप मेरे से मांगो ना कि आपको क्या चाहिए। उल्टे भगवान को कहना चाहिए कि आप मांगो मेरे से कि तेरे में देने की सामर्थ्य कहां से आई, बस आपसे मिल लिया इसलिए आपसे आ गई, आप मांगो क्या चाहिए। ऐसे निष्काम थे सेठ। अब काम कैसे करते थे सेठ जी, उसके ऊपर है।